SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का शनिवार को दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। डॉक्टर सिंह की पार्थिव देह को सुबह 9:30 बजे उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया, जिसके बाद अंतिम यात्रा शुरू हुई। डॉक्टर सिंह के पार्थिव शरीर को सेना की तोप गाड़ी पर लाया गया, जहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। उनकी पत्नी गुरशरण कौर और तीनों बेटियां उन्हें अंतिम विदाई देते हुए मौजूद थीं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्टर सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाए जाने और स्मारक के लिए केंद्र सरकार द्वारा अभी तक जमीन नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है। राहुल गांधी ने कहा कि सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने उनका सरासर अपमान किया है। इंडिया गठबंधन के कई दलों ने भी यही बात कही। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने भी कांग्रेस का समर्थन किया। पलटवार करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर डॉक्टर सिंह के निधन पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया।
ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया।
आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली में फर्जी वोटिंग के सहारे जीतने का प्लान बनाने का आरोप लगाया है। रविवार को प्रेस वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पिछले 15 दिनों में 5,000 नाम कटवाने और 7,500 नए नाम जुड़वाने को लेकर चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दी है।
आज मैं अपनी विधानसभा के कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। नई दिल्ली विधानसभा के, नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5,000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5,000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7,500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 है। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा, खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उल्टे आम आदमी पार्टी पर फर्जी मतदाताओं को शामिल करने का आरोप लगाया है।
हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में अवैध वोटों को बसाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है। कल भी साक्ष्य दिए थे, आज भी दिखाता हूँ। 23/12/2024 को इलेक्ट्रोल रोल फ्रीज हो गया कि अब नई मतदाता सूची 6 जनवरी को आएगी, लेकिन 24, 25, 26, 27 लगातार यह एक असेंबली का नाम है नरेला, सिर्फ 24 तारीख को यहां पर 2,000 से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं नया वोट बनाने के लिए, जबकि वोट बनाने की प्रक्रिया 5 साल पूरे चलती है। ऐसी दिल्ली की 70 विधानसभाएं हैं जहां अरविंद केजरीवाल अपनी कालाबाजारी और अपनी चोरी और मक्कारी का नमूना दे रहे हैं।
लेकिन दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने श्री केजरीवाल के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि मतदाता सूची का मसौदा 29 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया था और इस पर सभी आपत्तियों का निपटारा 24 दिसंबर तक कर दिया गया था। अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। किसानों की मांगों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रविवार को 34वें दिन में प्रवेश कर गई। किसान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए पंजाब हरियाणा सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसान नेता अभिमन्यु कोहर का कहना है कि वे अपना विरोध जारी रखने के लिए गांधीवादी तरीके का पालन कर रहे हैं और यह सरकार पर निर्भर है कि वह उनके वरिष्ठ नेता को बेदखल करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहती है या नहीं। उनका यह बयान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री दल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट न करने के लिए पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना के बाद आया है
कि हम गांधीवादी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स के साथ अपना आंदोलन चला रहे हैं। आज तक हमारे तमाम आंदोलन इस बात का गवाह है, वो इतिहास में दर्ज है कि हमने अपने आंदोलनों में सरकार के जुल्मों के कारण हमने कितना ही नुकसान अपने ऊपर सह लिया हो, लेकिन हमारे किसी भी आंदोलन में हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं हुआ और हम उसी प्रिंसिपल्स पे आज भी कायम हैं। अब सरकार को, संवैधानिक संस्थाओं को यह तय करना है कि क्या वो हजारों किसानों की लाशों के ऊपर से गुजर के जबरदस्ती सरदार जगजीत सिंह दल्लेवाल जी को गिरफ्तार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये फैसला संवैधानिक संस्थाओं को और केंद्र सरकार को करना है और जो भी स्थिति परिस्थिति बनेगी उसकी जिम्मेदारी उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं और केंद्र सरकार की होगी।
इस बीच किसानों ने विरोध में आज संपूर्ण पंजाब बंद रखने का आह्वान किया है, जिसका बहुत सी संस्थाओं और यूनियनों ने समर्थन किया है। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर साल का सबसे भारी हिमपात हुआ है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और तनमर्ग में बर्फबारी के कारण फंसे 68 सैलानियों को शुक्रवार देर रात सेना ने रेस्क्यू किया। भारी बर्फबारी के कारण शनिवार सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर 80% उड़ानें रद्द कर दी गईं। हिमाचल प्रदेश में शनिवार रात बर्फीला तूफान चला। 24 घंटे में रोहतांग दर्रे के दोनों ओर 3 फीट से ज़्यादा बर्फ जमा हो चुकी है, जिसकी वजह से अटल टनल भी बंद कर दी गई है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश हुई। दिल्ली में शनिवार सुबह तक एक दिन में 41.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पिछले 101 साल में दिसंबर में एक दिन में होने वाली सर्वाधिक बारिश है। और अब समाचार खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंच गया है। पहली पारी में 105 रनों की बढ़त लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 234 रन बनाकर भारत को जीत के लिए पांचवें और अंतिम दिन 340 रन बनाने की चुनौती दी। लेकिन भारत की जीत की आशा जल्दी ही धूमिल पड़ गई जब उसने अपने 3 अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली के विकेट मात्र 33 रनों पर गंवा दिए। चाय के समय भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 112 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 63 और विकेटकीपर ऋषभ पंत 28 रन बनाकर विकेट पर टिके हुए थे। नतीजा जो भी रहे, लेकिन यह मैच जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी के लिए यादगार रहेगा। बुमराह ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज में 30 विकेट लेने वाले पहले मेहमान गेंदबाज और दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। बुमराह के पास 12.83 रन प्रति विकेट की दर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिचर्ड हेडली के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत भी है। बुमराह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के किसी भी एक संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने से सिर्फ 2 विकेट दूर हैं। नीतीश मेलबोर्न में तीसरे दिन भारत के पहली पारी में 7 विकेट गंवाने के बाद बैटिंग करने के लिए उतरे थे, जब भारत का स्कोर केवल 191 रन था और टीम इंडिया फॉलो ऑन के मुहाने पर थी। नीतीश ने न केवल शतक लगाया बल्कि ऑस्ट्रेलिया की लीड को भी 100 रन के नज़दीक ले आए। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ 127 रनों की पार्टनरशिप की। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।